रहे हो? अरे मोटापा क्या इतनी बुरी चीज है? मुस्कानों को कर रहे हर दिल में आबाद, पहुंचे हुल्लड़ बम्बई, छोड़ मुरादाबाद। हंसना और हंसाना ये जिनका मोटो, HMV के हर रिकॉर्ड पे इनका फोटो। दुखों झंझटों पीड़ाओं में हर्ष आते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से ये पीट जाते हैं। हुल्लड़ जी का स्वागत है, माइक पर आए, कहाँ कहाँ पढ़ा है बेलन, कृपया हमें सुनाए। हुल्लड़ जी आइए आइए।
मैंने अपनी पत्नी से मना किया था कि घर की बातें अपने रिश्तेदारों को मत बताया करो।
खैर बात यह है कि एक बार मेरी टांग टूट गई थी, पिछले साल की बात है, तो मेरे पैर पर प्लास्टर बंधा देखकर एक मित्र ने पूछा, भाभी जी से फिर झगड़ा हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, इस बार कवि सम्मेलन में टूटी है। दूसरा मित्र बोला, क्या इसमें श्रोताओं का योगदान है? पहले ने कहा नहीं है। बोले आप कैसे जानते हैं? बोले सुनने वाले तोड़ते तो दोनों ही तोड़ते ना। पहले ने फिर पूछा, सच बताओ कैसे टूटी? मैंने कहा टूटी नहीं, जानबूझ के तोड़वाई है। बोले क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आप अब तक नहीं समझ पा रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष मना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष मना रहे हैं। अन्य कवियों से प्रार्थना है कि वो भी आगे आए और मेरे इस शुभ कार्य में हाथ बटाएं। ये अभी तक तो कोई आया नहीं शुभ कार्य में हाथ बटाने के लिए। लीजिए मैं कुछ हास्य रचनाओं के ट्रेलर प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सीन है, कॉलेज से लौटती हुई एक लंबी लड़की को देखकर एक ठिगने मजदूर ने फरमाया, जाने मन कन्या हो कि बिजली का खंबा हो, रंबा हो, रंबा हो, रंबा हो, जितनी भी प्यार से जियोगी उतनी ही जिंदगी रंबा हो, रंबा हो। लड़की इम्तहान देकर लौट रही थी और उसका पेपर बिगड़ा हुआ था, पारा तो पहले ही चढ़ा हुआ था। लड़की मानिंदे तलवार थी और उसके सर पर चंडी सवार थी। उसने उत्तर देते हुए कहा, जितने भी बाल हैं खोपड़ी पे तेरी उतनी ही चप्पलें अंबा हो, जगदम्बा हो। और वो देवी का नाम लेकर जो कार्यक्रम उस लड़की ने किया वो मैं बताना नहीं चाहता। बहरहाल जब मैं बंबई में शुरू में गया तो प्रोग्राम वगैरह तो थे नहीं, कवि सम्मेलन तो आते नहीं थे, तो मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। अब आप देखिए, एक लड़की को मैं हिंदी पढ़ाता था, रोज उसके घर जाता था। उसके नैनों का ऐसा था ताना बाना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। यूं तो कमल की पांखें थीं लेकिन आड़ी तिरछी आंखें थी, आड़ी तिरछी आंखें थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मास्टर जी मेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती है ना, मेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती है ना। मैं चुप हो गया। दूसरे दिन भी जब गया तब भी यही सवाल, मेरी आंखें हेमा मालिनी से। मैंने कहा अगर सच कह दिया तो ट्यूशन छूट जाएगी प्यारे लाल। तीसरे दिन भी जब उसने मुझसे यही पूछा, मेरी आंखें, मैंने कहा अरे कन्या मेरा उत्तर सुनकर तो गुस्से से जलेगी, जब तेरी एक आंख ही दूसरी आंख से नहीं मिलती, जब तेरी एक आंख ही दूसरी आंख से नहीं मिलती तो भला ये दोनों हेमा मालिनी से कैसे मिलेंगी, भला ये हेमा मालिनी से कैसे मिलेंगी। तो क्या होता है, कभी कभी हम सीरियस हो जाते हैं, गंभीर चीज सुनाते हैं, तब क्या होता है, एक कवि सम्मेलन में जब हमने गंभीर गीत गुनगुनाया तो मंच पर बैठी हुई एक खूबसूरत कवित्री का स्वर आया, बहुत हो चुका अब अपनी औकात पे आ जाइए, औकात पे आ जाइए, कोई हास्यरस की सुनाइए। मैंने कहा कैसे सुनाएं, हंसी जब अपनी जिंदगी में नहीं है तो उसे कविता में कहां से लाएं, कविता में कहां से लाएं। वो बोली आप तो मौत पर भी रचनाएं सुनाते हैं, क्या कभी मर के दिखाते हैं? आप तो मौत पर भी रचनाएं सुनाते हैं, क्या कभी मर के दिखाते हैं? मैंने कहा, वैसे तो हम रोज मर मर कर जी रहे हैं, भावना के घावों को कविता के धागों से सी रहे हैं, लेकिन आप कहें तो यही प्रयोग करके दिखाएं, यही प्रयोग करके दिखाएं, ऐतराज ना हो तो आप पर ही मर जाएं, ऐतराज ना हो तो आप पर ही मर जाएं। वो बोली, हट मरे, और उठकर चली गई। लेकिन अपनी किस्मत चली गई। सुनने वालों में हमारे होने वाले ससुर जी भी बैठे थे। उन्होंने क्रोध में कहा, तो आप यहाँ मर रहे हैं मिस्टर मुरादाबादी? अच्छा हुआ जो आपने अपनी असलियत बता दी, किसी गधे से कर दूंगा लेकिन आपसे नहीं करूंगा अपनी लड़की की शादी, नहीं करूंगा अपनी लड़की की शादी। मैंने कहा, सोच लीजिए, बहुत पछताएंगे, लौट कर मेरे ही पास आएंगे। इस धन के लोभी समाज में दहेज न लेने वाला गधा कहाँ से लाएंगे? बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने अपनी पत्नी से कहा, शादी को इतने साल हो गए, हमारी बगिया में फूल तो क्या ब्लेडी फूल भी नहीं खिला, ये बताओ, इस बंजर जमीन का अलॉटमेंट मुझे ही क्यों मिला? पत्नी बोली, एक बात बताएंगे, आप तो कवि हैं, शायर हैं, और घर पर पलंग भी एक ही है, अगर कोई बच्चा हो गया तो उसे कहाँ सुलाएंगे? मैं पलंग से थोड़ा सरक कर बोला, बीच में सुला लेंगे। बोली, दूसरा बेटा हो गया तो? मैं और सरक कर बोला, कोने में लिटा देंगे। बोली, तीसरा हो गया तो? मैं सरक कर कहने ही जा रहा था कि यहाँ लिटा लेंगे, किस्मत फूट गई, धड़ाम से नीचे गिरा और मेरी टांग टूट गई। एक पड़ोसी भागा भागा आया और चिल्लाया, हुल्लड़ जी क्या हुआ? मैंने कहा, जो लड़का हुआ ही नहीं उसने टांग तोड़ दी। कई ऐसी परेशानियां चिंताएं जो हम पे आती ही नहीं है, जो लड़का हुआ ही नहीं उसने टांग तोड़ दी, जब असली बेटा आएगा तो न जाने क्या गुल खिलाएगा, ये अस्पताल भेज रहा है, वो कब्रिस्तान पहुंचाएगा, वो शमशान घाट पहुंचाएगा। तो पीड़ा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो शमशान घाट ले जाती है, और कम होती है तो अस्पताल ले जाती है। लेकिन जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, बहुत सहयोग करती है बेचारी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाती, चाहे रात के 2 बज जाएं मेरे बगैर खाना नहीं खाती। एक मित्र बोले, बड़े खुशनसीब हो भाई, जो इतनी पतिव्रता पत्नी पाई। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम इन बीबियों से कैसे निभाना पड़ता है? भाई, ये खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। ये वो देश है मित्रों के, जहां हर 40 मील पर एक भगवान पाया जाता है, जिधर देखिए भगवान। तो मैं आपको एक रचना सुना रहा हूं, तथाकथित भगवानों के नाम, और अगर वो वास्तव में भगवान हैं तो ये रचना भी उन्होंने ही मुझसे लिखवाई है। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, जो आदमी ना हो सका भगवान हो गया, यार हम भी 20 साल से मंचों पर गा रहे हैं, हास्य व्यंग की कविताएं सुना रहे हैं, लाखों कन्याओं को हंसाया, उल्लू के उल्लू ही रे एक को भी नहीं फंसाया, अगर हम हुल्लड़ आश्रम चलाते, हंसाने की जगह उन्मुक्त सेक्स सिखाते, तो प्यारे लाल हम भी भगवान हो जाते, तुम्हारे आश्रम के प्रवचन द्वार पर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है, कृपया मस्तिष्क और जूते बाहर छोड़कर आइए, हमने सोचा, जिनके पास दिमाग है ही नहीं वो क्या छोड़ेंगे, वो क्या अपना सर फोड़ेंगे, दिमाग होता तो भला यहाँ आते, भगवान तो हर जगह मौजूद है, उसे ढूंढने के चक्कर में चूना तो नहीं लगवाते। तुमसे भी पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर और काका हाथ रसी ने दाढ़ी बढ़ाई,
रवीन्द्रनाथ टैगोर और काका हाथरसी ने दाढ़ी बढ़ाई, संपत्ति और शौहरत कमाई, हास्य कविताओं को पूरे देश में सुनाया। भाया, इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भगवान बनने का आइडिया इन्हें क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? स्वामी विवेकानंद ने जीवन को सहज होकर जिया, जबरदस्ती जटाजूट बढ़ा के मेकअप नहीं किया। आश्चर्य है, इतने बड़े संत होकर भी उन्होंने किसी महिला को नहीं फुसलाया, ऐशो आराम से नहीं रहे, अपने आप को भगवान नहीं कहलवाया। भगवान होते तो तुम्हारी तरह 12 लाख की कार में बैठकर ध्यान लगाते, धर्म को भी व्यापार बनाते। लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसी से दूसरों की बहु बेटियों को अपनी भाषण कला और मनोवैज्ञानिक चमत्कारों से रिझाते हो, उनकी सोई हुई काम वासना को जगाते हो। समझ में नहीं आता तुम किस एंगल से भगवान कहलाते हो? समझ में नहीं आता तुम किस एंगल से भगवान कहलाते हो? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसके उन्होंने टेप नहीं बनवाए थे, किताबों के संस्करण नहीं छपवाए थे, गोपियां उनकी बांसुरी सुनने के लिए 15 रुपए दे के नहीं आती थी, वो उनसे प्रेम करती थी, सेक्स का नाटक नहीं रचाती थी। ये वो देश है जहाँ इंसान कहने से नहीं कर्म से जाना जाता है, यहाँ सत्य पर आचरण करने वाले को महात्मा गांधी माना जाता है। तुमने लोगों के मन की अशांति और अज्ञान का नाजायज फायदा उठाया है, उनकी कामों कमजोरियों को भुनाया है। ये फायदा फिल्म और राजनीति वाले भी उठाते हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे भगवान नहीं लगाते हैं। भगवान नहीं लगाते हैं सुनने वालों, भगवान सूरज और चंद्रमा रोज रोशनी देते हैं, लाइट का बिल नहीं भेजते हैं। चारों तरफ झरने और समंदर लहराते हैं, ये पानी पीने वालों पर कितना वाटर टैक्स लगाते हैं। तुम तो धर्म को किताबों और टेपों के माध्यम से बेच रहे हो, सुना है आजकल बहुत नोट खींच रहे हो, सुना है आजकल बहुत नोट खींच रहे हो। हे आध्यात्मिक झांसानंद, तुम्हारा पूरा जीवन आध्यात्मिक झांसानंद, तुम्हारा पूरा जीवन एक फिल्म है जो सेक्स की भरमार के कारण धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी? जिस दिन असली भगवान का सेंसर लगेगा उस दिन पोल खुलेगी, जिस दिन असली भगवान का सेंसर लगेगा उस दिन पोल खुलेगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि विदेशों में जाकर संभोग से समाधि लगाओ, और ये निवेदन मान लिया उन्होंने। मेरा विनम्र निवेदन है कि विदेशों में जाकर संभोग से समाधि लगाओ, ये समाज पहले ही अधमरा है, इसे और लूला लंगड़ा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। तो ये है, मैंने आपको एक रचना सुनाई, अब मैं आपको एक सस्पेंस रचना सुना रहा हूं। सस्पेंस, सुनसान मोड़ से जैसे ही मैंने कार को आगे बढ़ाया, एक लड़की ने लिफ्ट लेने के लिए हाथ हिलाया। मैंने सोचा, खिला हुआ चांद और एक लड़की का साथ, हम तो तर गए द्वार का नाथ। खिला हुआ चांद और एक लड़की का साथ, हम तो तर गए द्वार का नाथ, वो भी सुंदर और अकेली, लेकिन समझ में नहीं आई ये पहेली। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? बोली, बंबई वीटी के पास चिंचपोकली स्टेशन है, चिंचपोकली। अंदर से तो मैं मनी मन हर्षाया, लेकिन ऊपर से मैंने उसे भाषण पिलाया, इतनी रात गए, आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए, जमाना खराब है, सावधान रहना चाहिए, आप लग रही हैं बदहवास। बाल जिंदगी के समान उलझे हुए और आंखें एक बेरोजगार की तरह उदास, गाल ईमानदारी की तरह धसक रहे हैं और ओठ पंजाब समस्या की तरह कसक रहे हैं, पंजाब समस्या की तरह कसक रहे हैं। वो बोली, लगता है आपके नेता हैं। हमने कहा, नहीं, हम कवि हैं। इतना सुनते ही वो ऐंठ गई, मुझसे और भी सट के बैठ गई, मुझसे और भी सट के बैठ गई। मैंने प्रोत्साहित होकर पूछा, कल संध्या समय आपका क्या कार्यक्रम है? यदि आपको आपत्ति ना हो तो जुहू भ्रमण के लिए चलेंगे, रात्रि में कोई आंग्ल सिने चित्र, इंग्लिश फिल्म, आंग्ल सिने चित्र देखेंगे। वो बोली, आपका परिचय? मैंने कहा, मैं हूँ हुल्लड़ मुरादाबादी, हिंदी सेवी। उसने मेरे सीने पर पिस्तौल रखते हुए कहा, और मुझे कहते हैं दस्य सुंदरी फूलन देवी, मुझे कहते हैं दस्य सुंदरी फूलन देवी। नींद में बार बार फूलन देवी का नाम सुनकर पत्नी ने कहा, इतनी रात गए, ये फूलन देवी क्या बड़बड़ा रहे हैं? हमने कहा, कविता बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। वो बोली, कविता ही लिखनी थी तो महारानी झांसी पर लिखते, जीजाबाई पर लिखते। मैं पूछती हूँ, देश के अमर शहीद भगत सिंह की माँ पर तुमने कलम क्यों नहीं चलाई, और इस फूलन देवी पर लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा आजकल की कविता भी भारतीय फिल्मों की तरह खोखली हो गई है, बिना सेक्स मारधाड़ और बलात्कार के हिट नहीं होती। अगर हम भी ये सब मसाले न डालें तो बच्चों का पेट कैसे पालें, बच्चों का पेट कैसे पालें, गृहस्थी की गाड़ी को कैसे चलाएं, ईमानदारी को ओढ़ें या बिछाएं, ईमानदारी को ओढ़ें या बिछाएं।
वो बोली, यहाँ तक तो गनीमत है कि कविता मैंने ही सुनी है। यह तो अच्छा हुआ कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया, नहीं तो कहीं मुई फूलन देवी सुन लेती तो वो तो यही कहती कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ऐसा था कि हमारी शादी की सालगिरह थी, वर्षगांठ थी शादी की। तो फिर मैंने पत्नी से कहा कि भाई मैं आ जाऊंगा 7-8 बजे तक, और रात को चलेंगे अपने कहीं 5-स्टार होटल में खाना खाएंगे। तो अब हम तो कभी ठहरे याद ही नहीं रहा, और हम एक टीवी की रिकॉर्डिंग में फंस गए। तो लौटने में करीब 10-11 बज गए। जब मैं लौट के आया तो बोले, ये टाइम है आपके आने का? मैंने कहा वो टीवी की रिकॉर्डिंग में फंस गया था। बोले, टीवी की फिक्र है आपको, बीवी की फिक्र नहीं है? मैं क्या बोलता? मैंने कहा भाई, बोले नहीं नहीं, मैंने कहा खाना खाने चल। बोले नहीं नहीं, खाना तो तुम बनाओगे आज, तब खाऊंगी। तो मैं अब उसे मना रहा हूं और वो कह रही है खाना बनाओ। तो सुनिए, आपकी पत्नी भी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप कैसे मनाएंगे, ये तरीका मुझसे पूछ लीजिए।
रूठी हुई बीबी को मनाने के लिए, जलती अंगीठी को बुझाने के लिए, मक्खन लगाने का कमाल होना चाहिए, आदमी को थोड़ा लल्लू लाल होना चाहिए, आदमी को थोड़ा लल्लू लाल होना चाहिए।
तो पत्नी बड़े गुस्से से आई, वो बोली,
मर्दों का बेरे जैसा काम होना चाहिए,
खाना खिलाने की बनाने की याद दिला रही,
मर्दों का बेरे जैसा काम होना चाहिए, बिना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए, बिना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए।
मैं कह रहा हूँ,
शादी के दिन मैंने तेरी एक भरी थी मांग, शादी के दिन मैंने तेरी एक भरी थी मांग, अब तो मांगे ही मांगे हैं राइट हो या रॉन्ग, अब तो मांगे ही मांगे हैं राइट हो या रॉन्ग, घर में अपने साड़ी का गोदाम होना चाहिए, घर में अपने साड़ी का गोदाम होना चाहिए, बिना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए।
अब मना रहा हूँ,
माथे में पेन हो तो बोलो तो बाम लगा दूं, गले में दर्द हो तो आकर के गला दबा दूं,
गले में, अब अपना मनाने का अपना अलग तरीका ना,
गले में दर्द हो तो आकर के गला दबा दूं, हुक्म तो दे के देखो सैंडल पे सर झुका दूं, जोरू को मनाएंगे खाना भी बनाएंगे, बनाना नहीं आता है फिर भी बनाएंगे, घर में हस्बैंड तो ताराम होना चाहिए, घर में हस्बैंड तो ताराम होना चाहिए, बिना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए।
अब मैं खाना बना रहा हूँ, देखिए मेरी क्या दुर्दशा होती है।
हाय रे राम दुहाई, मिर्चे आंखों में आई, रोटी भी 5 जलाई, दाल भी गल ना पाई, मुंह पर कालिक पुतवाई, काहे को किया कबाड़ा, अपना भूगोल बिगाड़ा, जल गया मेरा कुर्ता, बैंगन का ना बन पाया, बन गया मेरा भुर्ता, बैंगन का ना बन पाया, बन गया मेरा भुर्ता, शादी के दिन ये दूल्हा, देखो फूके है चूल्हा, आजा अब तो आजा, मेरा तो बज गया बाजा, चावल है कंकड़ वाले, आकर के इनको खा जा, आकर के इनको खा जा, मर्दों का बेरे जैसा काम होना चाहिए, मीना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए।
वो थोड़ी मुस्कुराने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो अब सोऊंगी। मैंने कहा नहीं,
जागे तो दोनों जागे, जागे तो दोनों जागे, सोए तो दोनों सोए, सुंदर सपनों में खोए, एक ही कंबल मेरा देशाम होना चाहिए, एक ही कंबल मेरा देशाम होना चाहिए, बिना टिप बीबी को सलाम होना चाहिए।